राम राम हरे हरे
राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण। इस्कॉन जगन्नाथ मंदिर बेंगलोर में भगवद गीता के सायंकाल के सत्संग में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय जिसका नाम है सारी गीता का सार, भगवान जब उपदेश देना शुरू करते हैं तो एक अच्छे प्रवक्ता को, एक अच्छे अध्यापक को, एक अच्छे टीचर को, एक अच्छे गुरुजन को किस प्रकार उपदेश करना चाहिए, हर एक चीज बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में, सूत्र रूप में कहनी चाहिए और ऐसे प्रेजेंटेशन करनी चाहिए कि सुनने वाले को जिज्ञासा उत्पन्न हो और प्रश्न पूछे, और जब वो प्रश्न पूछे तो वो किसी चीज का विस्तार करना चाहिए। तो दूसरा अध्याय इस दृष्टि से हमारे पूर्व आचार्यों ने इसको भागवत गीता का सार, सारी गीता का कंटेंट ऑफ गीता समराइज। सामान्य गीताओं में इस दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, लेकिन इस गीता के दूसरे अध्याय में सारे विषय जो भगवत गीता में है वो सूत्र रूप में है, और 18 अध्याय में फिर भगवान सारे भगवत गीता की शिक्षा की समरी करेंगे, उसको फिर वापस सूत्र रूप में कंक्लूड करेंगे हर चीज को। तो सिखाने की शैली ये है, किसी चीज को पहले थोड़े में समझाओ, सुनने वाले के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न हो, कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए पूछे, तब उसको विस्तार से समझाओ, और जब समझा के समाप्त करो तो फिर सारा जो आपने हम पहले बताया है उसका फिर एक बार सार या उसको शॉर्ट में फिर रिवाइज करके, और उसको जो मुख्य मुख्य बातें हैं फिर उसको समझा दो जो हो। तो ये एक शिक्षा की शैली है। तो जिस स्तर पे हम, जिस जगह पे हम खड़े हैं दूसरे अध्याय में, अर्जुन ने नीति शास्त्र के आधार के ऊपर, धर्म शास्त्र के आधार के ऊपर जो भी तर्क किए युद्ध न करने के, भगवान श्री कृष्ण ने उन सब तर्कों का निवारण किया। पाप लगेगा युद्ध करने से, दया के कारण मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा इस युद्ध करने से, और अर्जुन ने ऐसे जो भी 4-5 कारण, निर्णय नहीं कर सकता हूँ मैं कि इसका लाभ क्या होगा। तो भगवान ने इन सब तर्कों का एक एक करके खंडन किया है कि आपके ये तर्क ठीक नहीं है। लेकिन भगवान ने ये काम कब शुरू किया, जब अर्जुन ने शरणागति ली, अर्जुन ने शिष्य होना स्वीकार किया, शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा देना शुरू की। तो एक इससे ये भी शिक्षा मिलती है, जबरदस्ती किसी को कुछ सुनाने से कुछ लाभ नहीं होता है, जब तक जिज्ञासा हो और उसके पूछने में विश्वास हो आपके ऊपर, शरणागति हो, तो उसको कहोगे तो उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। बच्चे को भूख लगे तो उसको दूध लोगे तो ठीक है, जबरदस्ती पिलाओगे तो बच्चे को भी फायदा नहीं होगा और दूध भी बेकार में जाएगा। तो इसलिए भगवान ने भी सावधानी से कहा है कि इसका प्रचार श्रद्धालुओं में, जिज्ञासुओं में, जिसको मुझसे प्रेम हो, मेरे सिद्धांतों में किसी को ईर्ष्या न हो, खोट उनके मन में न हो, संशय न हो, उनको सुनाना तो लाभ ज्यादा होगा। अथवा ऐसे आधुनिक भाषा में जहाँ ग्राहक ज्यादा हो वहां दुकान खोलने से धंधा ठीक चलता है। तो प्रभुपाद कहते थे कि हमारे कस्टमर ज्यादा हिप्पी है, इसलिए हम इनके बीच में प्रचार करते हैं, क्योंकि ये जिज्ञासु हैं, ये घर छोड़ा है सुख की खोज में, इनको सुख मिल नहीं रहा है, तो हमारे पास सुख का साधन है, हम सुख के सूत्र को जानते हैं, आनंद का अनुभव करा सकते हैं, इसलिए ये हमारे अच्छे ग्राहक हैं, इसलिए कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बाहर हम प्रचार करते हैं, क्योंकि वहाँ बेचारे समझदार लोग हैं लेकिन सुख ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है उनको। तो इस दृष्टिकोण से शिक्षा की शैली में अर्जुन ने शरणागत शरण हुए और फिर भी कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा गोविंद। अब संजय देख रहा है दोनों के चेहरे के ऊपर क्या क्या हो रहा है। संजय ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। भाई क्यों मुस्कुराने लगे? प्रभुपाद जी के मुस्कुरा इसलिए लगे हैं कि अब मित्र शिष्य बन गया है, पहले मित्र था अब शिष्य बन गया है, तो अब गंभीर गुरु के स्तर पे खड़े होके मुझे इसको डांटना पड़ेगा। तो एक तो इसलिए भगवान को हंसी आई, और दूसरा भगवान को मुस्कुराना का कारण ये था, पहला अच्छा शिष्य मिला है, मैं कहता हूँ युद्ध करो, ये कहता आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए, जो कहेंगे वो करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा। और बोला ये बड़ा अच्छा शिष्य मिला है। तो इसलिए भगवान संजय ने कहा, भगवान ने थोड़ा मुस्कुराया। संजय बोलता है ताम वाच ऋषिकेश प्रहसन एव भारत। बड़ा मुस्कुराते हुए ऐसे सैन्योर उद्योर मध्य दोनों सेनाओं के बीच में ही विषीदंतम अर्जुन, जिसको विषाद हो गया था, वो पूर्ण रूप से आधुनिक भाषा में कंप्लीटली डिप्रेशन में आ गया था, बड़े स्ट्रेस उसके दिमाग में बहुत स्ट्रेस हो गया था, सर के ऊपर ऐसे हाथ रख दिया था उसने, धनुष बाण छोड़ के और भगवान के आगे बैठ गया था। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्ट्रेस में अर्जुन है, तो उसको कहा है विषीदंतम। उस विषाद ग्रस्त अर्जुन को मुस्कुराते हुए किसने? ऋषिकेश ने, गुड़ाकेश को। इदम वचह, ये वचन कहे। तो अब क्या वचन कहे, कब लिखा है श्री भगवान वाच, पढ़िए। असोचानन सोचस्व प्रज्ञवादांश्च भाषसे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडितः। ये भगवान गुरु के स्तर के ऊपर खड़े होकर शिष्य की ताड़ना कर रहे हैं, डांट रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रज्ञावादांश, प्रज्ञा बुद्धि को कहते हैं, बुद्धि सामान्य बुद्धि, धी बुद्धि, जब बुद्धि ऊपर उठती है तो उसको कहते हैं प्रज्ञा, इसी अध्याय में आएगा स्थित प्रज्ञा, प्रज्ञा बुद्धि का है, और उससे बुद्धि ऊपर उठती है उसको रिचम्बरा कहते हैं, बुद्धि के स्तर हैं, सामान्य बुद्धि, फिर उससे ऊपर उठी धी बुद्धि, धी मति, मति जो बुद्धिमान की मति होती है वो, फिर प्रज्ञा, फिर रितम्बरा, तो बुद्धि का स्तर ऊपर बढ़ता जाता है जैसे भगवान को वो ग्रहण करने लगती है। तो इस दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित है, उसका लक्षण इसके आगे भगवान से अर्जुन पूछेगा। तो यहाँ प्रज्ञा, अर्जुन तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहा है और बुद्धिमान समझ के वचन कह रहे हो, लेकिन तुम शोक उस बात के ऊपर कर रहे हो जिसके ऊपर करना नहीं चाहिए। तुम शरीरों के मरने की चिंता कर रहे हो, जो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल मरना है। पंडित लोग आत्मा के पतन से परेशान होते हैं, शरीर के मरने से परेशान नहीं होते हैं। जो पंडित है, जो वेद जानते हैं, जो शास्त्र को जानते हैं, वो शरीरों के मरने से परेशान नहीं होते, क्योंकि आज नहीं तो कल मरना ही। तो जो चीज मरने वाली है, जो चीज जाने वाली है, भाई जो मेहमान आता है आज नहीं तो कल जाएगा, आप रोगे तो रहेगा नहीं, ये तो नए है। ऐसे संसार में हम सब मेहमान हैं, हम तो यात्री हैं, थोड़ी देर के लिए 50-100 साल के लिए ट्रांजिट में यहाँ रुक गए हैं, आज नहीं तो कल जाना है। तो शरीर जो है उसके लिए रोने वाला सामान्य मूर्ख होता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को चिंता करनी चाहिए कि मेरी आत्मा का पतन न हो जाए। तो अर्जुन आपको सोचा, आप जो शोक कर रहे हैं वो कर रहे हैं शरीरों के ऊपर, असुन मतलब जो मरने वाले हैं, असुन जो शरीर खत्म होने की चिंता कर रहे हो, आत्मा के बारे में तुमने कुछ भी नहीं खाया अभी तक, इसलिए तुम पंडित जैसी बातें कर रहे हो लेकिन असल में मूर्ख हो। ये भगवान का गुरु के नाते ये शब्द। यहाँ एक बात ध्यान रखनी चाहिए, गुरु को शिष्य को ताड़ना करने का अधिकार है, पिता को पुत्र को ताड़ना करने का अधिकार है, पति को पत्नी को ताड़ना करने का अधिकार है, राजा को प्रजा को ताड़ना करने का अधिकार है, हर एक को ताड़ना करने का अधिकार नहीं। आपके अधिकार में कोई नहीं है तो उसको आप जबरदस्ती ताड़ना करोगे तो वो स्वीकार नहीं करेगा। तो कब कहां किसको कहना चाहिए ये भी सावधानी होनी चाहिए। मानो इस मंदिर में किसी आदमी को आप देख रहे हो कि गलत काम कर रहा है, अब आप उसको कहोगे तो होगा तुम्हारा क्या मतलब, तुम क्यों कह रहे हो, तुम्हारा अधिकार तो नहीं है ना। आपको मंदिर के जो भी इंचार्ज अधिकार है उसको कहना चाहिए कि देखो इस मंदिर में हम रोज आते हैं, ये व्यक्ति से ये त्रुटि हो रही है हम देख रहे हैं, लेकिन हमारा अधिकार नहीं है उसको कहने का, आप उसको कहिए। वो उसको कहेगा तो उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका उसके अंदर में काम कर रहा है। आप कहोगे तो वो आपकी बात सुनेगा नहीं, तो आपका अधिकार जहाँ नहीं है वहाँ कहने की जरूरत नहीं। हम कई जगह प्रचार करने जाते हैं, देखते हैं लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा अधिकार नहीं है उनको कहने का। आपका अधिकार नहीं है, आप जबरदस्ती उसको कहोगे तो उसके हृदय में आपकी कोई भी बात सुनने के लिए वो दरवाजे बंद कर देंगे, क्योंकि आपका अधिकार नहीं है। किसको कहना चाहिए ये भी बुद्धिमानी से सोचना चाहिए। कृष्ण इससे पहले क्यों नहीं अर्जुन को कहा, जब शिष्य हुआ तब ये बात कह रहे हैं। तो हमको सीखना इससे ये है कि आपके अधिकार में है तो कहो, नहीं अधिकार में है तो आप उसको मत कहो। देख भी रहे हो फिर भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि उसको आप कहोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और आगे आपकी बात थोड़ा भी आपका मित्र है तो वो मित्रता भी खत्म हो जाएगी। इसलिए किसको कहना चाहिए ये ध्यान रखना चाहिए। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने, ये तो अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, मैं इस सामने जो मेरे खड़े हैं हमारे अपने वंश के भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, ये राजा सारे खड़े हैं, इनकी बात कर रहा हूँ, इनके मरने का मुझे दुख होगा। तब श्री कृष्ण ये श्लोक कहते हैं, न त्वेवा हम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। ये श्लोक ऐसा अद्भुत भगवान ने कहा है। देखो ताड़ना करने का अधिकार है तो फिर उसको सुधारने का भी अधिकार है आपको, केवल किसी को डांटने से काम नहीं चलता है। और हमेशा डांटना भी नहीं चाहिए। आगे आप देखेंगे भगवान एकदम कहेंगे, हे भरत ऋषभ, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, हे मानवों में शेर, हे योद्धों में शेर, तो प्रशंसा भी करनी पाई। जब अच्छाई देखो तो प्रशंसा भी करनी चाहिए, त्रुटि देखो तो डांटना भी चाहिए। इसको कहते हैं जब कुम्हार मटका बनाता है ना, तो बाहर से उसको थाप मारता है वो सबको दिखता है, लेकिन अंदर में एक कोमल हाथ रखता है तब बाहर से थाप मारता है, तो मटके को शक्ल आती है, सिर्फ किसी को मारोगे तो टूट जाएगा, अगर प्रेम का हाथ अंदर से नहीं होगा तो शिष्य की शक्ल नहीं बनेगी, वो सुंदर नहीं बनेगा, पानी ठंडा करने के काम का नहीं बनेगा, टूट फूट जाएगा। केवल तोड़ना ठीक नहीं है, बाहर से दिखे कि थोड़ा ताड़ना कर रहा है लेकिन अंदर से प्रेम का हाथ भी होना चाहिए। तो कहीं समय समय के ऊपर उसके सदगुरु का ध्यान जरूर रखना चाहिए और अच्छाई की प्रशंसा, जेन्युइन एप्रिसिएशन हमेशा करनी चाहिए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अकाल जिस चीज का है वो है जेन्युइन एप्रिसिएशन का। जो योग्य व्यक्ति है उसकी जो जिसके अंदर गुण है उनको सराहना हमको नहीं आता है। प्रभुपाद जी कहते थे किसी के अंदर थोड़ा भी छोटा अच्छाई दिखे तो पंखा उसको इतना झेलो उसके ऊपर, जैसे चिंगारी को इतना हवा दो कि उसकी आग बन जाए, उसकी बुराइयां सब उसमें जल के नाश हो जाए और उसकी अच्छाई निकल के बाहर आ जाए। तो हर एक व्यक्ति में अच्छाई होती है और हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है। भगवान किसी की भी कमी नहीं देखते हैं और अच्छाई को कभी भूलते नहीं है, कमी को कभी याद करते नहीं। ये भगवान का विशेष अपने जो भी उनके पास आता है उनसे ऐसा व्यवहार है। राम जी के लिए ऐसा लिखा है कि किसी का भला किया हुआ कभी भूलते नहीं थे और किसी से गलती होती थी उसको याद नहीं करते थे, डांट दिया बस खत्म, फिर याद नहीं करने का उसको। श्री कृष्ण पूतना के विष को याद भी नहीं किया और उसने स्तंभ दिया उसको, कभी भूला नहीं, माँ का स्तंभ दे दिया। ये भगवान की भगवत्ता है, बुराई नहीं देती, अच्छाई को ग्रहण कर लिया और अच्छाई का स्तंभ दे दिया उसको। तो ये बहुत बड़ा बुद्धिमानी है कि डांटना है तो फिर शिक्षा भी देनी है, सिर्फ डांटना काफी नहीं है, सिखाओ उसको दोबारा वो गलती ना करे। अब अर्जुन को भगवान कहते हैं ये सामने जो आपको दिख रहे हैं ना राजा, इससे पहले भी ये थे, अब ये हैं, तुम भी अर्जुन पहले थे, ये राजा भी सब पहले थे, मैं भी था, अब भी है और भविष्य में भी रहेंगे। यहां भगवान आत्मा के नित्य होने का सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैं भी था अर्जुन, तुम भी थे और ये राजा सब थे। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले ये नहीं थे और बाद में ये सब भगवान में मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं। पहले भी ये अलग थे, एक एक व्यक्ति था, अभी भी ये सब व्यक्ति हैं और भविष्य में भी ये सब व्यक्ति रहेंगे। ये श्लोक प्रभुपाद जी के भावार्थ के अनुसार सब भगवान के में मिलके एक जो हो जाते हैं इस सिद्धांत का खंडन करता है, मायावाद का खंडन करता है ये श्लोक विशेष रूप से, कि सब भगवान में मिलके एक हो जाते हैं। जैसे कतरा पानी का एक बूंद समुद्र में मिलके समुद्र हो जाता है, प्रभुपाद इसको वो कहते हैं कि उस समुद्र में है एक पानी का कतरा मिलके समुद्र हो जाता है, लेकिन 900,000 और जलचर जल के अंदर आनंद से विहार करते हैं। कतरा तो एक होता है लेकिन 900,000 जलचर भी तो रहते हैं कि नहीं रहते हैं जल के अंदर, वो जल से मिलके एक थोड़ी हो जाते हैं। तो कतरे को सुख नहीं मिलता है लेकिन जल में रहने वाले 900,000 जीव आनंद लेते हैं। तो भगवान के साथ मिलने से, भगवान के सेवा में रहने से सुख ज्यादा है। और दूसरा उदाहरण इसी के ऊपर खंडन करते हुए देते थे, जो कतरा समुद्र में गिर के मिला है वो कल सूरज उगने से तप के फिर आकाश पे जाके बादल बनेगा, बाप होनेगा बादल बनेगा, फिर हवा आएगी नीचे धरती पे गिरेगा, फिर मिट्टी में मिलेगा, फिर नदी बनेगा, फिर समुद्र में जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो आवागमन तो चालू ही रहेगा ना। जो कतरा समुद्र के मिल में एक हो गया वो कहां समुद्र हो गया, वो तो वापस कल बादल बन जाएगा, वो तो फिर आगे चलता ही रहेगा। तो ये सिद्धांत आपका ठीक नहीं है। या कभी कहते हैं कि जैसे भगवान में मिलके एक हो गया, प्रभुपाद जी कभी उदाहरण देते हैं, हरा हरा तोता है, पैरट है, हरे पेड़ में जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तोता पेड़ बन गया, दिखता नहीं है क्योंकि पेड़ भी हरा है, तोता भी हरा है, लेकिन तोता अंदर बैठ के आम खा रहा है। तो भगवान के धाम में जाते हैं वो आम खाते हैं, भगवान में मिलके एक नहीं हो जाते हैं, इसका अर्थ ये है। अब ऐसे सामान्य भाषा में ये है, कोई कहे कि भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर आज बेंगलोर में प्रवेश किया, तो इसका मतलब नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बेंगलोर बन गया, यहाँ आया पिघल गया और बेंगलोर हो गया, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है कि बेंगलोर के शहर में उतर के नीचे आया है। तो भगवान भाई वो भगवत धाम में प्रवेश किया, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान में मिल के एक हो गया। तो ये सिद्धांत यहाँ भगवान कहते ये पहले थे, अब हैं और भविष्य में रहेंगे, पहले थे अब हैं और भविष्य में रहेंगे। कौन भगवान किसकी बात कर रही है? शरीरों की बात नहीं कर रहा है भगवान, आत्माओं की बात कर रहा है। ये एक एक इंडिविजुअल आत्मा है, एक एक इंडिविजुअल सोल है, ये नित्य है, ये अपना व्यक्तित्व कभी गंवाते नहीं है। इसलिए इसके लिए एक शब्द प्रभुपाद यूज करते हैं, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब है कि है भगवान के पार्ट, लेकिन है पार्सल में, मतलब डब्बे में अलग है, वो उनके साथ मिलने वाले नहीं है। पार्सल का मतलब जैसे आप कोई लिफाफा होता है उसके अंदर बंद करते हो, जैसे इतनी बड़ी पोस्ट की बैग होती है उसमें सब पार्सल अलग होते हैं, सब मिलके एक नहीं हो जाते, सब एक हो, एक आदमी के पास नहीं जाते सारी चिट्ठियां, जिसको जो पार्सल जिसके नाम का है उसके पास जाता है। तो ऐसे पार्सल का मतलब है उसका अपना नाम और उसका अपना स्टैम्प लगा हुआ है कि इसको कहाँ जाना है। तो पार्सल शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हर एक इंडिविजुअल है, अपने आप में स्वतंत्र है। प्रभुपाद ने वेदों का मंत्र यहाँ उद्धृत किया है, नित्य नित्या नाम चेत चेतना नाम एको बहु नाम विद्याति कामान। एक भगवान अनेक आत्माएं और सबकी इच्छा अनादिकाल से पूरी करता आ रहा है। यहाँ एक बात ध्यान में देने की है, भगवान हमारी इच्छा अनादिकाल से पूरी करता आ रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन डिजायर, आपको इच्छा करना सीखना चाहिए। इस दुनिया में इच्छाएं समाप्त नहीं हो सकती हैं, लेकिन ठीक इच्छा करना सीखना बुद्धिमानी है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत, कृष्ण भक्त शांत और निष्काम अतएव शांत, उसकी कोई इच्छा नहीं है। तो ये इच्छा रहित होने का अर्थ क्या है? कोई भौतिक इच्छा नहीं होना। आध्यात्मिक जिज्ञासा हमेशा भगवत प्राप्ति की बनी रहनी चाहिए। इच्छा के ऊपर सब कुछ निर्भर है, हमको ठीक इच्छा करना सीखना चाहिए। क्या हमको चाहिए इस दुनिया में, इच्छा का मतलब क्या चाहिए? तो आप आज एक लिस्ट बनाओ कि आपको क्या चाहिए, आपकी लिस्ट में क्या आएगा। सपोज आपको अभी कहा जाए कि आप पेपर निकालो, लिस्ट बनाओ आपको क्या क्या चाहिए, और भगवान कहता है कि मैं आप सब आपकी इच्छा पूरी करूंगा, तो कागज के ऊपर पहला कलम से क्या लिखोगे? ईमानदारी से लिस्ट बनानी हो तो कैसे बनाओगे? क्या चाहिए? आपको जगन्नाथ जी बाहर आके पूछे कि क्या चाहिए आपको, तो आप तैयार है कुछ कहने के लिए, क्या कहोगे? 99% कुछ न कुछ दुनिया की चीज मांगेंगे, जिस चीज की उसके पास कमी है वही मांगेगा। सच है कि झूठ है? कौन कहेगा कि भगवान हमको आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? ऐसा कौन कहेगा? भगवान हमको तो आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतना भी नहीं, हमको आपकी स्मृति बनी रहे, आपके भक्तों का संग मिलता रहे और कुछ नहीं चाहिए, ये इच्छा प्रहलाद महाराज की है। ये इच्छा ध्रुव महाराज की है, ये इच्छा सारे भक्तों की है। भगवान आपको हम कब भूले नहीं, आपके भक्तों का संग सदा मिलता रहे, चाहे हम नरक में हों या नीच जूनी में जाऊं, लेकिन भक्त के संग से कभी भी मेरे को अलग न होना पड़े, ये इच्छा उत्तम इच्छा है। भक्तों का संग मिलता रहे, आपकी स्मृति बनी रहे, बस बाकी मेरे भाग का जो है वो मुझे मिलेगा मेरे कर्मों का। भगवान देता है सबको, अपने कर्मों के हिसाब से देता है। जो आपकी सेवा में लगे वो आप दीजिए, जो मुझे माया में फंसाए वो मत दीजिए, ऐसे भी कभी प्रार्थना किया करो कि भगवान जो आपकी सेवा में लगाए वो तो मुझे दीजिए, जो मुझे आपसे दूर ले जाके माया में फंसा दे वो मत दीजिए, चाहे मैं मांगू तब भी मत देना। कभी ऐसे ही भगवान को ऑप्शन दे देना चाहिए कि मैं गलती करके कभी मांग लूं। इसलिए एक टीका में विश्वनाथ चतुर्वेदी बात लिखा है, भगवान कहते हैं चेतन चैतन्यमृत में ये लिखा है, अमृत झाड़ी विश्व मांगे, अमृत झाड़ छोड़ के, अमृत का मतलब मेरा संग छोड़ के, भक्तों का संग छोड़ के, भक्ति छोड़ के विषय मांगे, दुनिया का सुख मांगता है वो तो मूर्ख है। भगवान कहता है मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं उसको क्यों विष दूंगा, वो तो मूर्ख है, मैं तो मूर्ख नहीं हूं ना, मांगने वाला मूर्ख है, लेकिन आया मेरे पास है तो मैं उसकी जो इच्छा है वो पूरी करते करते उसके हृदय को इतना पवित्र करता हूं, जो मांगा है वो जब मैं देता हूं वो कहता है मुझे नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज को ने गया था पिता के बराबर राज मांगने के लिए, और जब भगवान मिला भगवान बोला राज ले लो, बोला नहीं चाहिए, हृदय से पवित्र हो गया। भगवान देते हैं लेकिन देने वो देने के प्रोसेस में हृदय को पवित्र कर देते, तब उस चीज में भोग की वासना आपकी रहती नहीं, वो मिल भी जाए तो भगवान की सेवा में लग जाएगी, आप उसका भोग नहीं करेंगे, ये भगवान की कृपा है। तो मांगना चाहिए, ये डिजायर के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, लेकिन भगवान सबकी डिजायर अनादिकाल से पूरी करता है, तो हमको केवल अपने डिजायर कैसी करनी चाहिए। भगवान आपके आपको भूले नहीं, आपके भक्तों के संग से कभी वंचित न हो, हमारी मूर्खता से हम कुछ मांगे आप वही देना जो आपकी सेवा में लग सके, जो हमारे को मूर्खता से माया में डाले उससे आप बचा लेना, मेरी हमारी मूर्खता को मत देखना, ऐसी इच्छा प्रकट करनी चाहिए। तो ये इस श्लोक के बाद ये आध्यात्मिकता का पहला पाठ है, देही नो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यते। अब कृष्ण अर्जुन को सब आत्माओं के सनातन होने का शिक्षा देने के बाद कि वो सब व्यक्ति है, कहते हैं ये शरीर देही अस्मिन् इसके अंदर, इस शरीर का मालिक इस शरीर से अलग है, शरीर में शरीर का मालिक शरीर से अलग है, जैसे घर में घर का मालिक घर से अलग है, घर और घर का मालिक दोनों अलग है, शरीर और शरीर का मालिक दोनों अलग है। बोला प्रमाण क्या है, बोला ये शरीर बचपन का होता है, जवानी का बनता है, बुढ़ापे में भी ढल जाता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। आपके बचपन की सब चीजें आपको याद पड़ी हैं, लेकिन बचपन का शरीर नहीं है, इसका मतलब बचपन के शरीर में भी आप थे, आपकी जवानी की सब चीजें आपको याद हैं, लेकिन जवानी का शरीर ढल गया, तो जवानी का जब शरीर था तब भी तो आप शरीर में थे, आज आप बुढ़ापे में शरीर में बैठा है कोई तो उसकी जवानी उसको याद है, उसका बचपन याद है, लेकिन शरीर कहाँ है, बचपन का शरीर आपका कहाँ चला गया? कहाँ गया आपका शरीर बचपन का? कहाँ गया? खत्म हो गया। वो खत्म हो गया। वो आपके घर में फोटो में लगा हुआ है, आप दिखा सकते हैं, ये मेरा बचपन का फोटो, लेकिन कहाँ है वो दिखाओ हमको। मेरा है कहोगे, ये तुम्हारा है, हम कहते हैं ये मेरा फोटो है, लेकिन तुम कभी जाके दिखाओ, नहीं दिखा सकता है, फोटो ही दिखा सकता है, बस इतना ही काफी। जवानी का शरीर कहाँ गया? तो शरीर बदलता है, लेकिन शरीर का मालिक वही उसमें रहता है। हमने कितने भाई, आप कम से कम सोचो आपने घर कितने बदले हैं इस जिंदगी में, हाँ 10, 12, 5, 7, 4, 2, 3 घर सब बदलते हैं, कभी एक फ्लैट लिया कभी दूसरा लेगा, आप तो वही हो ना, घर बदल गया, आप तो नहीं बदले, घर बदल दिया, घर का अल्टरेशन कर दिया, किसी का हाथ टांग टूट गया, किसी का पांव टूट गया, किसी का आंख फूट गया, लेकिन आत्मा तो अंदर वही बैठा हुआ है ना। घर बदलता है, उसमें अल्टरेशन होती है, लेकिन आत्मा का तो कुछ अंतर नहीं होता है। तथा ज्ञानांतर प्राप्ति, ऐसे देह का अंत भी हो जाता है। बचपन का शरीर समाप्त हो गया, कोई रोया नहीं, जवानी का शरीर समाप्त हुआ, कोई रोया नहीं, बुढ़ापे का शरीर समाप्त होता है, फिर क्यों रोते हो भाई? रोना चाहिए जब बचपन का शरीर चला गया, उसमें कितना अच्छा खेल कूद कर रहे थे, न कमाना पड़ रहा था, न कोई परेशानी थी, वो गया तब तो कोई नहीं रोया, रोना चाहिए था कि इतना अच्छा था, न कमाना, न मेहनत करना, नाचना कूदना, सारा दिन खेलना, कितना अच्छा शरीर था, कोई चिंता नहीं थी, उसके जाने के ऊपर तो रोना आया नहीं। जवानी का शरीर ढल गया, रोना आया नहीं, जिसमें सुख लिया तब तो रोना चाहिए, आया नहीं। अब बुढ़ापे का न आंख से देखते हो, न कान से सुनते हो, न दांत से कुछ चबा के खा सकते हो अखरूट, फिर इस बूढ़े शरीर के मरने के ऊपर क्यों रो रहे हो? ये बुद्धिमानी का प्रश्न है कि नहीं, रोना चाहिए तो बचपन के शरीर के ऊपर, क्या हमारी अच्छा था जीवन चला गया, अब क्या मुसीबत, स्कूल में इतना बस्ता उठाने जाना पड़ रहा है, रो बैठ के होमवर्क करो पागल की तरह, क्या जरूरत है इसको। किसी का लड़का यहाँ से अमेरिका चला जाए और जिंदगी भर कभी वापस नहीं आए, रोना आता है क्या? कुछ होता है, मेरा बच्चा फॉरेन में, तेरा बच्चा फॉरेन में है कि ऊपर चला गया, क्या पता, तेरे लिए तो गए के बराबर हो गया, तेरे को तो किसी काम का आया नहीं, उसको भी जाते हैं कि नहीं जाते, दुनिया में आप देख लो। तो भगवान यहाँ कहते हैं ऐसे देह के अंत होने पर बुद्धिमान व्यक्ति रोता नहीं। धीरस तत्र न मोहयते, मूर्ख तत्र मोहयते, इसका अर्थ ये है, धीरस तत्र न मोहयते। धीर किसको कहते हैं? धीर का मतलब होता है धीरजवान, धीरजवान का मतलब भगवान के आश्रित, भगवान के वचनों में विश्वास करने वाला धीरजवान व्यक्ति। धीरजवान मतलब वन हु इज धीरज, धीरज का क्या अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है? सोबर, सुधीर भोक्ता। गीता के शिक्षा लेने वाले को सुधीर कहा है, धीर से भी एक डिग्री ऊपर सुपरलेटिव, सुधीर। जो धीर और सुधीर होगा वो आत्म तत्व का जिज्ञासु बनेगा। धीरज तत्र न मोहयते, इसकी जगह पे ऐसा दिखाना है मूर्ख तत्र मोहयते, मूर्ख तत्र मोहयते। मूर्ख ऐसे शरीर के परिवर्तन के ऊपर मोहित होता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन बुद्धिमान नहीं रोता है। जो भगवान करते हैं वो हमको समझ में नहीं आता है। एक गोपाल का बहुत अच्छा भगत था, गोपाल का एक गोविंद दास अच्छा भगत था, भगवान की रोज सेवा करे बड़ा मसुख से, लेकिन सारा दिन भगवान को खड़ा हुआ देखे। ऐसे एक दिन का कभी थोड़ा आराम कर लिया करो, घूम फिर के आ जाओ, कब तक ऐसे खड़े रहोगे? जब आते हैं आप खड़े, मैं दुख होता है आपको देखते खड़ा होकर। एक काम करता हूँ मैं, आपके सारे कपड़े वपड़े पहन के यहाँ खड़ा हो जाता हूँ दो चार घंटे, आप जाओ घूम फिर लो। उसको दुख हुआ कि भगवान हमेशा खड़े रहते हैं, कभी ना हिलते हैं झूलते हैं, भगवान हमेशा खड़े रहते हैं कि भक्त पता नहीं अचानक किसी को किसी परेशानी में आ जाए, मैं कहीं आराम में हूँ उसका टाइम खराब ना हो जाए, इसलिए भगवान तो हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान ने हंसी आ गई, बोला तुम मेरा चिंतन बहुत करते हो, मेरे खड़े होना तुमको अच्छा नहीं लगता है, तुम खड़े हो जाना लेकिन चुप रहना, बोलना मत, बोलेगा तो काम बिगड़ जाएगा। ये गोविंद दास भगवान के ऐसे वस्त्र पहन के ऐसे खड़ा हो गया। अब एक व्यक्ति बड़ा आया, 1000 रुपया पेटी में डाला और भगवान को प्रार्थना किया कि मेरे को बहुत बड़ा ठीका लेना है, वो मिल जाए। उसी को तो खड़ा था गोविंद दास को, वो देख रहा है, और जब पर्स जेब में डाल रहा था पर्स नीचे गिर गया, वो चला गया। थोड़ी देर में एक दूसरा आया, उसने कहा मेरी बेटी की शादी है, मेरे ऊपर कृपा करो, हे गोपाल मैं आपके शरण में हूँ। ऐसे प्रणाम करके उठ के देखता है तो उधर पर्स पैसों का भरा हुआ है। बोला गोपाल तत्काल आप सब अभी मांगा अभी दे दिया, अभी तो वो पैसों का पर्स जेब में डाला, घर गया लड़की की शादी का सामान। तब एक और व्यक्ति जो नाव में जैसे होते हैं इंजीनियर जो जाते हैं जहाज में बाहर नेविगेशन वाले, वो कहा आज मेरा रात को जहाज में बाहर महीने तक जाना है, भगवान इस यात्रा सफल हो, अभी प्रणाम कर रहा है। तब तक पहले वाला पुलिस को लेके आ गया कि मेरा पर्स गिरा था और इसी को देखा और पकड़ा, बोला इसी ने पर्स उठाया। तब वो बेचारा गोविंद खड़ा था, बोला नहीं ले। वो बड़ी परेशानी का समस्या हो गई, उसको पकड़ के पुलिस में ले गए। वो पुलिस में ले गए, असली गोपाल जी आ गया, गोविंद को कहा तुम चुप रहे, बोला मैं चुप रहा नहीं का ऐसा ही है। बोला क्या क्या हुआ बताओ, बोला पहला आया दान डाला और ठीके के लिए प्रार्थना किया, उसका पर्स गिर गया। बोला अच्छा हुआ, वो उस पैसों से रिश्वत दे के ठीका लेता और नर्क में जाता, इसलिए मैंने उसके पैसे गिरवा दिए थे। बोला फिर दूसरा आया लड़की की शादी का, बोला उसको वो अच्छे काम में पैसे लगाने को मैंने दे दिए थे, ये मेरी व्यवस्था थी, तुमको समझ में नहीं आएगी। बोला फिर तीसरे को पकड़ के लेंगे, बोला अच्छा हुआ वो जेल में नहीं जाता, उसका जहाज कल डूबने वाला था, उसका जहाज कल डूबता वो गया होता तो मेरे पास प्रार्थना करने आया। पुलिस पकड़ के गई, 2 दिन जेल में रहेगा लेकिन डूबने से तो बच जाएगा ना, तुम्हें ये समझ में नहीं आता है, मैं जानता हूँ कि किसका क्या कब होना है। तो इसलिए जो भगवान करता है उसमें राजी रहना चाहिए, धीरजवान वो है जो भगवान के किए में राजी है। वो कहता है शुक्र है भगवान तेरा, जिस हालत में तुम रखो उसमें मैं राजी। तो इसको धीरजवान कहते हैं, शरीर छुड़ा के भी किसी को भगवान भलाई करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हमारा एक आध्यात्मिक शरीर होता है, वो शरीर प्राप्त होने के बाद शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब तक ये भौतिक शरीर है तब तक इसमें परिवर्तन होता रहेगा। तो धीरज तत्र मोहेते, आप धीरजवान हो जाइए। शरीरों के ऐसे परिवर्तन के ऊपर रोना धोना ठीक नहीं है। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा और कहा आपकी बात ठीक है, फिलासफी से तो मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन भीष्म ये इसका शरीर, इसकी गोद में मैं खेला, ये मेरे को प्रेम से चूमता था, मेरे सर के ऊपर हाथ घुमाता था, ये शरीर तो समाप्त हो जाएगा, आत्मा तो रहेगी भले रहे, लेकिन इस शरीर से जो मैंने सुख लिया है वो तो नहीं मिलेगा। तब भगवान ये श्लोक बोलते हैं, मात्र प्रशास्तु कौन्तेय शीतुषण सुख दुख दाह आगमा पाए नो अनित्यास्तान्स तितिक्ष्व भारत। कृष्ण को ये मानना पड़ा अर्जुन के इस तर्क के ऊपर कि शरीर बराबर बदलते हैं, लेकिन इन शरीरों के साथ जो हमारा संबंध हो जाता है वो जब टूटता है तो पीड़ा होती है, वो संबंध जब छेदन होता है तो पीड़ा होती है। तब भगवान कहते तान से तितिक्षो भारत, अर्जुन ये तो सहन करना पड़ेगा, ये तो सहना ही पड़ेगा अभी या कल या परसों या 50 साल के बाद, लेकिन ये टूटना फूटना सहना पड़ेगा। ये सहना कैसे है? मात्र स्पर्शास्त कौनते शीत उषण दुख दाह सुख दुख दाह आगमा पायनो अनित्यास। सर्दी आती है तो शरीर को पानी ठंडा लगता है, गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है। गर्मी आती है तो फिर ठंडा पानी अच्छा लगता है, कोल्ड को और फ्रिज का ठंडा पानी पीने का मन करता है, लेकिन सदा के लिए एक जैसा मौसम नहीं रहता है। तो ये जो मौसम बदलते हैं, ये ऋतु बदलते हैं, जो जो सीजन बदलती हैं, इनसे त्वचा के ऊपर अंतर आता है, कभी ठंडा कभी गर्म लगता है। भाई ठंडी में कितने कोट कितने हमने कंबल लेके पूरे कर दिए, गर्मी आएगी तो पंखे लगा लिए, कूलर लगा लिया, एसी लगा लिया, तो दोनों को बर्दाश्त तो करते आ रहे हैं कि नहीं करते आ रहे हैं? भाई सर्दी की वजह से कहीं भाग नहीं गए, गर्मी की वजह से काम छोड़ा नहीं, घर रोटी खाना छोड़ी नहीं, सोना छोड़ा नहीं, धंधा छोड़ा नहीं, गर्मी आई सर्दी आई दोनों को बर्दाश्त किया कि नहीं किया? भाई कुछ ना कुछ योजना बना के बर्दाश्त किया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये सदा नहीं रहेंगे, आज नहीं तो कल खत्म होने वाली है, तो 2 महीना है तो चली जाएगी। अनित्य आज आग मां पायनो आए हैं, अनित्य है, सदा रहने वाले नहीं। ऐसे भी ये शरीर सदा रहने वाले तो है नहीं, आज नहीं तो कल ये गिरेंगे ही गिरेंगे, तुम नहीं मारोगे तो क्या ये मरेंगे नहीं क्या? और वैसे भी तुम मारोगे ये तो निमित्त मात्र हो, इनका टाइम खत्म हुआ उस दिन इनको मरना पड़ेगा, तुम मारो या कोई और मारो। तो ये श्लोक जो है सहनशीलता का, संसार के अंदर दुख सबको आते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसको दुख नहीं आया हो, और विशेष रूप के किसी सज्जन के मरने का दुख सबको सहना पड़ता है। समय के साथ किसी का कोई दादा मामा चाचा कोई न कोई संसार से चला गया है, लेकिन भगवान इतना बड़ा दयालु है, कितनो बड़े से बड़ा दुख न हो, छोटे से छोटा बच्चा जाए, जवान जाए, पत्नी जाए, 6 महीने साल के बाद सब कुछ भूल जाता है। 2 दिन रोते हैं, 10 दिन रोते हैं, महीना रोते हैं, साल के बाद श्राद्ध में खीर खाने के लिए खुश हो जाते हैं। साल तक तो रोना चला गया, खाना याद आ जाता है। ये कितना बड़ा अद्भुत संसार में, जिसके लिए रो रो के चिल्ला के 2 दिन नहीं खा रहे थे, साल के बाद पूरी हलवा और खीर खाते हैं। ये हम ही करते हैं, दिखाते हैं कि नहीं करते हैं? तो थोड़े दिन का रोना तो थोड़े दिन का ही है ना, जितने थोड़े दिन की सर्दी है, थोड़े दिन की गर्मी है, थोड़े दिन की वर्षा है, थोड़े दिन का रोना है, फिर तो हर 12 महीने के बाद हलवा खाना है, हर 12 महीने के बाद खीर खानी है। मर गए तब तो दादा की खीर खा रहे, नहीं मरता तो कहां से खाते? नहीं कैसे लग रहा है, सच लग रहा है झूठ लग रहा है? हरे कृष्णा। लड़ाई करती थी बहुत ज्यादा पत्नी पति से, और जब उसका प्राण निकला तो बेचारा पति दुखी सर के ऊपर हाथ रख के बैठा था, तब आकाश में बिजली चमकी, बहुत बड़ा गजगोर होने लगा, बादल खड़कने लगा, भला ऊपर पहुंच गई, लगता है कि ऊपर वाले को भी परेशान कर दिया। इधर तो घर के बर्तन तोड़ती थी, ऊपर तो घर हालात बुला बचा दिया, पूरी प्रकृति के ऊपर कोप हो गया। हरे कृष्णा, हरे हे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे हरे।
तो शरीर के छूटने का दुख सबको समय के साथ सहना पड़ेगा। और सबको इस चीज का अनुभव जीवन में कम से कम 5-10 बार होता है। एक आदमी के अपने लाइफ में 5-10 बार ऐसा सबको एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। उस अनुभव से हमने कभी ये नहीं सीखा कि एक दिन हमारा शरीर भी छूटेगा। ये भगवान इतने अनुभव इसलिए देते हैं कि हम अब इसलिए तैयारी करें कि एक दिन हमारा शरीर भी छूटेगा, उसके लिए तैयारी करें। कि भाई अपने सब बैठे अपना शरीर छूटेगा कि नहीं छूटेगा एक दिन, इस बात के ऊपर विश्वास है कि नहीं है? तो फिर तैयारी कोई कर रहा है कि छूटने से पहले तैयारी भी तो करनी चाहिए ना। हम सामान्य भाषा में हमेशा उदाहरण देते हैं, कन्या घर में जन्म लेती है ना, 20 साल माँ बाप पालते हैं, लेकिन मालूम होता है कि इसको विदा करना है, उसकी तैयारी करते रहते हैं एक दिन विदा करना है। हमको भी एक दिन इस शरीर को विदा करना है, हम तो आत्मा है, ये हमारा शरीर उस कन्या की तरह है, एक दिन इसको छोड़ना विदा करना पड़ेगा। तो विदा करने पड़ेगी, उसको तैयारी करनी पड़ेगी ना, ऐसे तो नहीं विदा होगा, रोना होता है। कन्या की शादी होगी तो माँ बाप को रोना आता है, परिवार को रोना आता है, लेकिन फिर भी खुश होते हैं कि अपने घर जा रही है। तो साधु संत के मृत्यु के ऊपर आंखों से आंसू तो आते हैं, लेकिन हृदय में बड़ा आनंद होता है कि अपने घर चला गया, भगवान के घर गया है। इसलिए कीर्तन करते उसके साथ जाते हैं, रोते हुए नहीं जाते। साधु संत संसार से शरीर छोड़ता है तो कीर्तन करते हैं कि ये अपने घर गया। और संसार के लोग रोते जाते हैं और साधु के पीछे कीर्तन करते हुए जाते हैं, आंखों से आंसू आते हैं। रोना भी आता है, रोना इसलिए आता है कि इसका संग अब हमको नहीं मिलेगा, लेकिन खुशी इसलिए है कि अपने घर जा रहा है। लड़की का भी इसलिए विदाई के समय दुख होता है, लेकिन दिल में सुख होता है कि अपने घर जा रही, तो वही सुखी रहेगी। तो आत्मा जब भगवान के धाम जाएगी तभी सुखी रहेगी। तो ये शरीर छूटेगा तब वहां जाएंगे ना, तो ये शरीर छूटेगा तब वहां जाएंगे ना। तो शरीर छूटने से पहले त्याग और तैयारी करना चाहिए। इसलिए कुछ संत कहना चाहिए कि कहते हैं कि कुछ मरने का अनुभव जीते जी करना चाहिए। 10 दिन चला जाना चाहिए यहाँ से वृंदावन, किसी को नहीं बताए, एक आदमी को बता के जाए, सबको लगे कि पता नहीं कहाँ चला गया। और देखेंगे सब कि 10 दिन दुनिया चल रही है, दुकान भी चल रहे हैं, घर भी चल रहे हैं, रोटी भी पक रही है, सब खा भी रहे हैं। 10 दिन के बाद फोन करेंगे, मैं वृंदावन दर्शन करके वापस आ रहा हूँ, तो अनुभव हो जाएगा कि इसके बगैर दुनिया चल सकती है। ये हमारे को जीवन में अनुभव करना चाहिए। सबसे मुसीबत ये हम समझते हैं हम चले जाएंगे दुनिया पता नहीं बंद हो जाएगी। कब्रिस्तान में जितने सोए हुए ना सब ऐसे ही समझते हैं हमारे बाद दुनिया बंद हो जाएगी, और हम तो समझते हैं कि तुमने जगह ज्यादा ले लिया, कम कर लो, हमको यहाँ भी घर बनाना है। हमारे न होने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा इस दुनिया में। और ऐसे कई उदाहरण है, हम सोचते हैं हमारी वजह से हम नहीं होंगे तो पता नहीं, नहीं हम हैं तब कोई और उनका बच्चों का भी देखभाल हमसे अच्छा कर लेता। और ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे शास्त्रों में भी और जीवन में भी, कि हरेक की रोजी भगवान के पास है और उसको अपने कर्मों के साथ लाता है। एक दूसरे से लेना देना हमको पूरा करना है, इसलिए ये अनुभव जीवन में किसी और के जाने के, ये युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने पूछा था कि इस दुनिया में सबसे आश्चर्य में डालने वाली चीज कौन सी है। तब यक्ष ने कहा था, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषा स्थावर इच्छन्ति किम् आश्चर्य मत परम। कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में, कोई न कोई संसार से जा रहा है, कोई न कोई कहीं न कहीं रोज जा रहा है, एक गाड़ी का नंबर KA04MF3865 लिखा है, सेंट्रो गाड़ी है, संतों को दे दो, संतों संत है ना। नीचे प्लीज लिखा है, ये लिखा है हटाओ, किसकी है भाई? अड़तीस पैंसठ गाड़ी गया। चंपक गाड़ी हटाना नहीं है, डर से गया कि संतों को देनी पड़ेगी। वो हमारा मित्र है ना, वो समझ गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम्। रोज कोई न कोई व्यक्ति किसी घर में, किसी पड़ोस में इस संसार से जा रहा है। जगन्नाथपुरी में एक स्वर्ग द्वार है समुद्र के किनारे पे, उसमें हर दो मिनट के बाद एक हरिशव लाते हैं और उसका अग्नि संस्कार होता है। पूरे ओडिशा से लाते हैं, वो तो चालू, वो तो तीन चीजें यहाँ हर वक्त खुली होती है जगन्नाथपुरी में। एक समुद्र जब चाहो तब डूबो, और एक स्वर्ग द्वार जब किसी को मरे तब लाके उसका अग्नि संस्कार करो, एक जगन्नाथ का मंदिर जब जब जाए तब दर्शन करो। ये तीन चीजें हर समय खुली मिलेंगी आपको, वहाँ कभी बंद नहीं होती है जगन्नाथपुरी। वो बनारस में किसी एक किनारे पे जाओ, हर वक्त कोई न कोई एक आपको शव मिलेगा। हाँ, किसका? तो कोई न कोई संसार से रोज जा रहा है, लेकिन जो साथ में होते हैं वो समझते हैं हमारी बारी कभी नहीं आएगी। शेष का मतलब जो बचे हुए हैं, स्थावर, हम हिलने वाले नहीं है। इच्छन्ति, सोचते हैं कि आश्चर्य परम, इससे बड़ा और क्या आश्चर्य इस दुनिया में है कि दादा चला गया हमको याद है, हम उसके कंधे के ऊपर चढ़ते थे, पिताजी चला गया हमको याद है, और हम समझते हैं हम कभी नहीं जाएंगे। मूर्खता नहीं है। हम एक 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 अनुभव बताते हैं। कितने लोग जीवन में मरने से पहले अपनी वसीयत लिखते हैं? बहुत कम लोग लिखते हैं कि नहीं? जितने लिखते हैं उनको ये तो पता है कम से कम हम मरेंगे, हमारे पीछे ठीक करे दे काम चलाएं। तो जितने वसीयत लिखते हैं उतने कम से कम बुद्धिमान है, समझते हैं कि हमको मरना है, बाकी को ये भी तैयारी नहीं करते। वसीयत भी एक तैयारी के अंतर्गत आता है। प्रभुपाद ने अंत समय बैठ के विल लिखी है कि कौन मैनेज करेगा सोसाइटी को, कौन मंदिर, कौन कौन किधर सामान रहेगा, विल लिखवाइए वकील को बुला के। तो ये एक छोटा सा वसीयत नामा बताता है कि कितने लोग तैयारी करते हैं, कितना परसेंट लिखते हैं विल। 1% भी नहीं लिखते हैं। सच है कि झूठ है भाई? वही लिखेगा जिसको मालूम है मुझे मरूंगा, वही लिखेगा ना। ये मुश्किल है लेकिन ये सत्य है, कड़वा सत्य है, लेकिन इसकी तैयारी करने वाला बुद्धिमान है। तैयारी क्या है? तैयारी यही है, भगवान का नाम जपना है। अभी से बैठ के ये धन इकट्ठा करो, जिस मार्ग के गिने जाए न कोसा, ये गुरुवाणी में एक शब्द है, जिस मार्ग के गिने जाए न कोसा। जब यहाँ से हम जाएंगे कितने किलोमीटर है उसका पता नहीं है, क्या साथ ले जाएंगे उसका कोई साधन नहीं है। हरि नाम वहाँ संग तोषा, उस वक्त आपके साथ सिर्फ हरि नाम जाएगा, वही आपका आहार सब समझो, भोजन समझो, सहारा समझो, एक वही हरि नाम वहाँ संग तोषा। उस रास्ते में तोषा कहते खाने की चीज को, जैसे यहाँ से आप बेंगलोर से हैदराबाद जाओ या दिल्ली जाओ तो भी बैग कपड़ों की बनाओगे, टिफिन में प्रसाद बनाओगे, पूरी सब्जी उठाओगे रास्ते में खाने के लिए, वहाँ जाओगे उसको फोन करोगे, सारी व्यवस्था करोगे। लेकिन इस दुनिया से जब जाना पड़ेगा तो ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, तो कौन सा टिफिन और कौन सी बैग उठाएंगे? वैसे इस दुनिया में पता लगता है, आप अपनी गाड़ी में चाहे जब जाते हो तो जितना चाहे उतना सामान भर के ले जाते हो, अपनी गाड़ी है, ٹرین میں جاؤ گے تو کم سے کم اتنا اٹھاؤ گے جتنا کولی اٹھا سکے، جہاز میں جاؤ گے تو 20 کلو سے زیادہ اٹھانے نہیں گے، ابھی 15 کلو کر دیے، تو جہاز میں جانا ہے تو کم اٹھانا پڑے گا، جو ضروری ہے اتنا ہی اٹھائیں گے، تو ایسے دنیا سے جب جائیں گے تب کچھ بھی نہیں اٹھانا، یہ بھی تو انبھو کرنا چاہیے نا، بھائی کچھ بھی نہیں اٹھے گا تو کٹھا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو جانا ہے کہ نہیں ہے، یہ تو پہلے نہ جانا ہے تو تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ یہ دھن اصلی ہے، وہ دھن کچا ہے، یہ دوسرا ایک بہت اچھا قربانی کا شبد ہے، یہ دھن کچا، یہ جو روپیہ پیسہ ہے یہ کچا دھن ہے، وہ دھن پاکا، وہ جو بھگوان کا نام ہے وہ پکا دھن ہے، وہ دھن آپ کے ساتھ جائے گا، یہ دھن یہاں رہ جائے گا، تیاری کرنے کا مطلب بھگوان کے نام کا سمرن روز کرنا چاہیے، یہی ہمارے ساتھ جائے گا، نہ شریر ساتھ جائے گا، نہ شریر کے سمبندھی جائیں گے، نہ گھر جائے گا، نہ پریوار جائے گا، نہ دھن جائے گا، نہ گھوڑا جائے گا، نہ ہاتھی جائے گا، نہ گاڑی جائے گی، کیول نام جائے گا، تو نام جپنا چاہیے نا، اس میں آلسی کیوں ہونے، یہی تو دھن ہے جو ہمارے ساتھ جائے گا، تو یہی تو تیاری کرنی ہے۔ اب اس بھگوان نے کہا سہنا پڑے گا ارجن تان سے تتکش بھارت، اب بھگوان کہتے ہیں سہنے کا بھی اچھا پھل ملتا ہے، سہنا مجبوری نہیں ہے، سہنے کا کیا پھل ملتا ہے سنیے، یم ہی نہ ویتھیمتی تے پورشم پورش رشبھ سم دکھ سکھا دھیرم سو امرت ویا کلپتے۔ اب شری کرشن بھگوان کہتے ہیں دیکھو ارجن، یا دیکھو ادھر ڈانٹا ہے، دو شلوک پہلے ڈانٹا ہے اشوچا نے سوچتا، اب کہتے ہیں پرش رشب، ہے پرشوں میں شریشٹھ، رشب کا مطلب شریشٹھ، جب ڈانٹنے کی جگہ ڈانٹنا چاہیے، جہاں سرانا ہے وہاں سرانا چاہیے، اگر باہر سے کوٹنا ہے مٹکے تو اندر سے پیار کا ہاتھ بھی ہونا چاہیے، بچوں سے بھی ڈیل کرو تو ایسے کرنا چاہیے، اتوا جو بھی آپ کے کام کرنے والے ہیں ان کے پاس سے ڈیل کرنا ہے تو ایسے کرنا چاہیے، ابھی پرش رشب کا ہے، پرشوں میں شریشٹھ ارجن، اگر تم نہ ہی ویتھیمتی ایتے، تم کو اگر ان شریروں کے چھوٹنے کی ویتھا نہیں ہوگی، ویتھا کا مطلب تکلیف، دکھ، پریشانی، ویتھا، بہت بڑی ویتھا ہے میرے سے، مطلب میں بڑا دکھی ہوں، اگر تم اس ویتھا کو برداشت کرو کر لو گے، پرش شریشٹھ سم دکھ سکھم دھیرم، تم دھیرج وان بن کے سکھ اور دکھ میں سمان رہو گے، سمان کیوں رہ سکتا ہوں، کیسے رہ سکتا ہوں، بولے دونوں سدا نہیں رہیں گے، سکھ سپنا، دکھ بدھ بدا، دونوں ہیں مہمان، سکھ بھی مہمان ہے اور دکھ بھی مہمان ہے، سدا مہمان سدا رہ سکتا ہے کیا، مہمان آیا ہے تو جائے گا، تو سکھ سوپنا ہے، سوپنا سدا نہیں رہ سکتا، دکھ بدھ بدا پانی کا ہے، ختم ہو جائے گا، دونوں میں مہمان، اس کو آدر دیجئے جو بھیجے بھگوان، دونوں بھگوان کی طرف سے آ رہے ہیں، ہمارے کرموں کے ہیں، دونوں کو سویکار کرو، دونوں میں سم رہو، دکھ بھی میرے کرموں کا ہے، مجھے بھوگنا چاہیے، یہ دیہ، یہ ہمارے شریر کا دنڈ ہے، یہ مجھے بھوگنا چاہیے، اور سکھ میرے کرموں کی کمائی ہے، اگر آپ ایسے کرو گے تو ملے گا گا اس کو، سو امرت ویا کل، اس کو امرت کی پراپتی ہوگی، وہ مرتیو سے بچ جائے گا، وہ امرت پد کو پراپت کرے گا، امرتم امرت ویا لبریشن، امرت کا مطلب مرتیو سے مکت ہو گیا، پھر تو اس کو کبھی دوبارہ ان شریروں کے جھنجٹ میں پڑنا ہی نہیں پڑے گا، ایک بار برداشت کرنے سے اگر ہمیشہ کے لیے مکت ہو جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، سب تو برداشت کرنے کا لابھ کیا ہے، امرت ویا کلپتے، تو وہ امرتا کے پد کو پراپت کرے گا، مرتیو سے مکت ہو جائے گا، شریروں کے جھنجٹ سے ہی ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گا، دلیہ شریر میں نارد کی طرح جب جائے تب گھومے، نارد کا دلیہ شریر جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، گا سکتا ہے، اور وہ دیویہ شریر ایسا جب جاتا ہے آدمی ویکنٹھ میں تو دیویہ شریر ملتا ہے، जो शरीर में कभी बूढ़ा होता है, जिस शरीर में कभी रोग नहीं होता है, और वो शरीर कभी खत्म नहीं होता है, वो चिन्मय शरीर होता है। वो हाथ हाड़ मांस का बना हुआ शरीर नहीं होता है। वो देवलोक में जो रहते हैं उनका भी भोजन हमसे अलग है, उनका भी आयु हमसे बहुत ज्यादा है। तो ये बर्दाश्त, अगर आप सहनशीलता आपके पास है तो आपको अमृत की प्राप्ति होगी। तो थोड़ी सी सहन से अमृत मिले तो सौदा महंगा नहीं है। नहीं सहन करोगे तो भी मरेगा, और सहन करो मरने के ऊपर तो अमृत को प्राप्त करो। सुख दुख में सम दृष्टि वाले बनो, दुख में चिल्लाओ मत। हम आपके कर्मों का है, आपके पास आया है, आपने ही ये बोया है, इसलिए आपको ये फल मिला है, इसलिए उसको भोगने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं तैयार होगे तब भी भोगना पड़ेगा, इसलिए हाथ जोड़ के उसको स्वीकार कर लो। तो ये श्लोक जो है, पहले तो धीरज, यहाँ भी धीर शब्द है और 13वें श्लोक में भी धीर शब्द है। तो जब तक हम धीरजवान नहीं बनेंगे, सोबर नहीं बनेंगे, देखो भक्त सोबर होता है, जेंटलमैन होता है, सहनशील होता है। ये चेतन महाप्रभु का श्लोक, जैसे कविराज गोस्वामी कहते हैं, कंठहार बना के गले में रखना चाहिए। वो श्लोक क्या है? तृणाद अपि सुनिशेन तरोर अपि सहिष्णोन अमानीन मान देन कीर्तन्या सदा हरि। अपने आप को इतना निमर बनाओ, इतना निमर बनाओ, गली में गिरे हुए घास के तिनके से भी ज्यादा निमर बनाओ। तिनका हवा में उड़ के आंख में जाए तो किसी को कष्ट दे सकता है, लेकिन तेरा जीवन इतना निमरता वाला हो कि तेरे से किसी को कष्ट न हो। और निमर बनोगे तो कष्ट आएगा, तुम दूसरों को कष्ट मत दो फिर भी तुम्हारे ऊपर आएगा, तब क्या करो? तब तरोर, वृक्ष से ज्यादा सहनशील बनो। गर्मी सर्दी में वृक्ष खड़ा होता है बाहर की नहीं खड़ा होता? कोई गर्मी के अंदर उसके ऊपर पंखा नहीं लगता है, सर्दी में हीटर नहीं जलता है, कोट नहीं पहनता, कंबल नहीं पहनता, लकड़ी काटो तो तुम्हारे को लकड़ी देता है, पत्थर मारो तो फल देता है। हर हाल भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों की प्रशंसा की है भागवत में, और उन ब्राह्मणों से यज्ञ करके और भूखों को भोजन न दे उनसे वृक्ष श्रेष्ठ है। ये भगवान ने सिद्धांत स्थापित किया है कि वृक्ष सबको छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण यज्ञ करके भूखे को भोजन नहीं दे, इससे ये वृक्ष अच्छे। ये भागवत में भगवान ने सिद्धांत, ये कृष्ण का श्लोक है और ये महाप्रभु का श्लोक है, वृक्ष से ज्यादा सहनशील बनो। इसका अर्थ ये नहीं है कायर बनो, भगवत गीता अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसा रहा है, कायर होने के लिए नहीं उकसा रहा है। निम्रता का अर्थ कायरता मत लेना, हो ये हो गया है कि निम्रता से हम कायर बन गए, सहनशीलता से हम दूसरों का गलत व्यवहार सह रहे हैं। अधर्म को नहीं सहना चाहिए, अधर्म को नहीं सहना चाहिए। अधर्म अगर सहते हुए किसी को देखते हो तो भी अपराध है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, कोई किसी लड़की को छेड़ रहा है और उसकी रक्षा करने के लिए आप नहीं खड़े होते हो, नहीं करते हो, तो तुम्हारा सहनशीलता नहीं है, ये तुम्हारी कायरता है। धर्म का उस वक्त तुम्हें अपने जान से खेल के उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये धर्म का नियम है, कुछ मर्यादाएं ऐसी हैं। तो प्रायः भगवत गीता निम्रता के साथ वीरता भी सिखाती है, कायरता नहीं सिखाती है, ये ध्यान देना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे अहिंसा कृष्ण नहीं कह रहा है, अरे हिंसा कैसे कह रहा है, अर्जुन से तो हिंसा करा रहा है। अधर्मियों को नाश करने के लिए तो अस्त्र शस्त्र उठाने में पीछे नहीं हटना चाहिए।
प्रभुपाद जी का इच्छा था वर्ण आश्रम के अंतर्गत हमारे को अपना क्षत्रिय होना चाहिए, अपना रक्षक होना चाहिए। अंततो गत्वा जब तक आप में से कोई ऐसे वीर पुरुष नहीं निकल के आएंगे जो रक्षक बनेंगे, जो शासक बनेंगे, तभी पूरा देश भगवान के इस रास्ते के ऊपर चलेगा। केवल यहाँ तक जांझ बजा के मर्दन हड़ताल कीर्तन तक हमारा सीमित कार्य नहीं है। हमारे कार्य का क्षेत्र तो पूरा विश्व है और पूरे विश्व के अंदर जब तक हमारे अपने ट्रेन किए हुए क्षत्रिय राजा नहीं बनेंगे तब तक हम धर्म का प्रचार सब जगह नहीं कर सकते। तो ये हमारा लक्ष्य है, यहाँ तक हमारी समाप्ति नहीं है कि 16 माला जब के हमने ढोल बजाकर कीर्तन किया और कथा समाप्त हुई। नहीं, आपको यहाँ से आगे बढ़ के क्षत्रिय अपने अर्जुन जैसे पैदा करने पड़ेंगे। ये भगवद गीता की शिक्षा क्षत्रिय पैदा करने का भी, भगवद गीता भगवान ने किसी ब्राह्मण को नहीं दिए, किसी सन्यासी को नहीं दिए, किसी साधु को नहीं दिए, ग्रस्त को दी है, क्षत्रिय को दी है, जो रक्षा कर सकता है उसको दी है। तो गीता की शिक्षा करने वालों में से कुछ लोगों को हमारा काम है ये शिक्षा देना, लेकिन आप में से किसी को उठ के वीरता से रक्षा करने के लिए भी तो तैयार होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तक हम सिर्फ ब्राह्मण बनाने का एक प्रयास है वो कर रहे हैं, लेकिन क्षत्रिय बनाएंगे नहीं। क्षत्रिय तेज नहीं होगा तो ब्रह्म तेज अकेला काम नहीं करेगा। क्षत्रिय तेज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, हमारे को आवश्यकता है क्षत्रिय की, शासक हमको चाहिए। और हम में से कोई आज नहीं तो कल निकालना पड़ेगा। एक आपका भक्त अपनी योग्यता से कृष्ण की कृपा से, मानो कम से कम, मैं छोटी बात कह रहा हूँ, किसी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाए तो पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका प्रचार करने में भी आपको 90% फैसिलिटी मिल जाए, एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति अगर हो जाए तो ये भी आपका दृष्टिकोण होना चाहिए कि हमारे को ये शिक्षा कायर बनाने के लिए नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सहनशीलता का अर्थ नहीं है कि अधर्म को सहना चाहिए, उसके लिए सामने सीना तान के खड़ा होना, उसकी भी शिक्षा गीता के अंदर है। तो कभी गीता को कायर बनाने का साधन मत समझना, लेकिन निम्रता कहाँ चाहिए, कायरता कहाँ चाहिए, अपने लिए सहनशीलता चाहिए, धर्म के लिए नहीं। दो सैनिक थे, दो अलग देशों के, लड़ाई में लड़ रहे थे। एक सैनिक ने दूसरे को गिराया, उसकी छाती के ऊपर बैठा और छुरा निकाल के उसको घोंपने वाला था, नीचे वाले ने थूका उसके मुंह में, उसने छुरा फेंक दिया, छोड़ के खड़ा हो गया। नीचे वाले को आश्चर्य लगा, तुम मुझे मार सकते थे, तुम्हारे हाथ में छुरा था, तुमने मुझे छोड़ा क्यों? बोला, जब तुमने मेरे मुंह पे थूका तो मेरे को तेरे ऊपर क्रोध आया, उस वक्त अगर मैं छुरा मारता तो तेरे मारने का कारण मेरा व्यक्तिगत क्रोध होता और उसका मुझे दोष भोगना पड़ता, लेकिन अब फिर उठो युद्ध करेंगे, मैं धर्म के लिए, मेरे देश के लिए तेरे को मारूंगा, लेकिन व्यक्तिगत मेरे अपमान के लिए मैं अगर तुम्हें मारूंगा तो मैं इसका दोष का भागी बनूंगा। तो सहनशीलता अब व्यक्तिगत करनी है, लेकिन धर्म की और देश की अथवा किसी अच्छे कार्य की गलत काम होने नहीं देना, अपने लिए सहनशीलता करनी है, धर्म की नहीं, अधर्म होते हुए नहीं देख सकते। ये उदाहरण आपको ठीक समझ में आ रहा है कि इसका अर्थ क्या है? मैं अपने लिए सहन कर सकता हूं लेकिन धर्म के लिए नहीं सहन कर सकता, जैसे अपने लिए नहीं मांग सकता हूं लेकिन भगवान के कार्य के लिए दूसरे का। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा था कि अपने लिए मुझे मांगना नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के पीठ बनाने के लिए मैं घर घर में जाऊंगा और एक एक से एक रुपया भी लेने से मेरा काम बने तो मैं करूंगा। तो ये दो अलग पक्ष है। तो इसी प्रकार से धर्म का पक्ष भी अलग है। अमृत उसको प्राप्त होता है जो सहनशीलता करता है, जो कुर्बानी देता है वही अमृत को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो आगे वाले श्लोक में, अब जो श्लोक है, ये सिद्धांत का श्लोक है और 16 के बाद अब 29 तक ये जो 15 श्लोक है इसमें आत्मा के लक्षण बताए गए हैं। आइए 16वां श्लोक पढ़ते हैं। नास्ति विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अंतस् स्वान्योस्तत्वदर्शी भी। जो तत्वदर्शी हैं, तत्वदर्शी का मतलब क्या है? जो सार को जानते हैं शास्त्र के, जो धर्म को सार को जानते हैं, उनका ये कहना है कि शरीर सदा रह नहीं सकता है और आत्मा को कोई मार नहीं सकता। भगवान अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, पहले कहे हैं जो तत्वदर्शी हैं वो ये कह रहे हैं। इसका अर्थ है साधु, शास्त्र, गुरु, ये तीन चेत हैं। भगवान सिद्धांत के साधु ऐसे कहते हैं, तत्वदर्शी कौन है? तत्व शब्द जब आए तो भागवत से एक तत्व है ब्रह्म परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तत्व एक है, तीन प्रकार से उसको देखते हैं, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। और एक तत्व है 4 अध्याय भगवत गीता में, वो तत्व है जन्म कर्म च मेदिरम एवं यो वेति तत्वतः। जो तत्व से भगवान को जानते हैं, यहाँ लिखा है तत्व, तत्व से जो शरीर और आत्मा के भेद को जानते हैं। शरीर सदा रह नहीं सकता और आत्मा कभी मर नहीं सकता, ये बुद्धिमान ऋषियों का कथन है। इसमें कोई दो राय तो है नहीं, शरीर सदा रह नहीं सकता और आत्मा कभी मर नहीं सकता। इसके बाद आत्मा अविनाशी है, सारे शरीर के अंदर आत्मा है, इसलिए शरीर काम कर रहा है। इस आत्मा को आग से जलाया नहीं जा सकता, इस आग को पानी से डुबाया नहीं जा सकता, हवा से सुखाया नहीं जा सकता, किसी अस्त्र शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अर्थात आत्मा अमर है। एक और एक सरल श्लोक और पढ़ लेते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही। ये एक उदाहरण भगवान इतना सरल दे रहे हैं कि जैसे कोई पुराना कपड़ा फट जाने के ऊपर फेंक के नया पहन लेता है, ऐसे ये आत्मा बूढ़े और बेकार शरीर को त्याग कर छोड़ कर नया शरीर धारण करती है। कितना सरल उदाहरण है, आपने अपने जीवन में कितने वस्त्र बदले हैं? इस जिंदगी में 50 तो जोड़े कम से कम अभी तक फाड़ के फेंक के होंगे कि नहीं होंगे? जिस उम्र के लोग आप बैठे हो, 50 जोड़े तो कम से कम सबके गए होंगे और मरने तक 101 और हो जाएंगे। तो इसका मतलब 150 जन्म तो आपके कपड़ों के इस जन्म में हो गए। आप तो वही हो लेकिन कपड़े इतने बदल गए कि नहीं बदल गए? तो इतना सरल सा उदाहरण भगवान ने दिया है, कपड़े फटते हैं कोई रोता नहीं है, नया ले लेता है और नया मिलता है तो खुश हो जाता है, खुश होता है कि नहीं होता है नए मिलने के ऊपर? लेकिन कोई बड़ा कीमती कपड़ा पुराना मिले, नया कपड़ा खरीदा हुआ हो और उसको अचानक कहीं से कट जाए तो दुख होता है। ऐसे कभी छोटा शरीर जल्दी टूट जाता है तो दुख होता है, लेकिन टूट जाता है तो बर्दाश्त करते हैं, दूसरा नया ले लेते हैं, मालूम है मिल जाएगा। तो कपड़ों के टूटने के ऊपर परेशान नहीं होते हैं, दूसरा लेके पहन लेते हैं और नया मिलता है तो खुश होते हैं कि नहीं होते? नया जोड़ा मिलता है खुश होते हैं कि नहीं होते? तो फिर कृष्ण कह रहे हैं भीष्म देखो 300 साल से ऊपर हो गया, अब झलियां पड़ी है, अब ये नया बन के नौजवान आएगा तो इस खुशी की बात है कि रोने की बात है? ये सब बूढ़े बूढ़े खड़े हैं सामने, इनका शरीर छूटने तो नया मिल जाएगा, कपड़े बदलेंगे, नए पहन के आ जाएंगे, इसमें क्या है? कपड़े बदलने के समान शरीर बदलना है, इतना सरल, भगवान की दृष्टि में इतना शरीर सरल है, हमारी दृष्टि में बड़ी परेशानी। भगवान सिर्फ परेशान इसलिए है कि एक दिन में 3 बार कपड़े बदलते, वो बोलते इतना मैं जल्दी इनको शरीर कैसे दे पाऊंगा, ये तो दिन में 3 बार बदल लेते हैं, इनकी आदत इतनी। हरे कृष्णा। लास्ट टाइम मैं इसके ऊपर एक 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 टिप्पणी की थी, याद है किसी को इस श्लोक के ऊपर? इसने हमारा, हमने एक अपना तात्पर्य इसका अनुभव से कहा था, जीवन में जिसके पास कम कपड़े हैं उसको कम शरीर लेने पड़ेंगे, और जितने ज्यादा है इसका मतलब उसकी इच्छा उतने ज्यादा शरीर लेने की, ये इसका तात्पर्य बहुत सरल है। अगर एक ही धोती है जो रात को सुखा लो धोके और सुबह उसको पहन लो, तो इसका मतलब अभी आखिरी शरीर है आपका, भगवत धाम जाओगे, और 2, 4, 5, 7, 10 है तो कोई बात नहीं, लेकिन अलमारी भरी हुई उसका क्या होगा? ये इसका दूसरा भावार्थ है, कम कपड़े रखने का मतलब कम शरीर लेने की इच्छा है, ज्यादा रखने का मतलब ज्यादा लेने की इच्छा है, और प्राय हम सब ज्यादा वाले लिस्ट में है। वैसे सरलता जीवन में आनी चाहिए आस्ते आस्ते, नहीं सिंपलिसिटी। प्रभुपाद यहाँ से लेके दो ही धोती थी, एक धोके सुखाते थे दूसरी पहनते थे, बट साधु के भाव से सिंपलिसिटी में रहना अच्छी बात है। एक मानसिकता ऐसी, जैसे हम उदाहरण कभी देते हैं, एक आदमी जिंदगी में इतना कमाता नहीं है, उससे ज्यादा घर की कीमत है, सच है कि झूठ है? अभी घर जितना महंगा होया उतना आदमी नहीं कमाता है आजकल बेचारा, घर पति पत्नी दोनों मिलके कमाते तब भी परेशानी से घर नहीं लिया जाता नया, तो महत्वपूर्ण घर है कि आदमी है? आदमी है ना, लेकिन कीमत घर की ज्यादा है आदमी से। किसान ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जमीन से ज्यादा महत्वपूर्ण है? किसान, लेकिन जमीन मांगिए किसान सस्ता मिलता है। ये मानसिकता इस भौतिक वादियों की ऐसी हमारे सर के ऊपर थोप दी है कि शरीर को महत्व दे दिया, आदमी को आत्मा को भुला दिया, घर की कीमत बढ़ा दी, आदमी की कीमत घटा दी, जमीन की कीमत बढ़ा दी, किसान का कीमत कम कर दिया। होना चाहिए किसान महंगा और जमीन सस्ती, होना चाहिए घर सस्ता और आदमी महंगा, होना चाहिए आत्मा का इम्पोर्टेंस और शरीर को कम ध्यान देना, लेकिन 99% हमारा विचार शरीर का चलता है, इसलिए हर चीज हमारी मानसिकता भौतिकता की इसमें दिखती है। यही सिद्धांत हमारे कपड़ों के ऊपर लगता है, हम भौतिकता के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा कपड़े रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये हमारी मानसिकता ऐसी होगी कि हम शरीर कांशियस है, आत्मा कांशियस है। मालाएं कितनी है आपके पास? एक ऑफिस में रखो, एक घर में रखो, एक गाड़ी में रखो, एक रह जाए तो दूसरी पड़ी हो, वो तो एक भी उठाने में तकलीफ होती है, और कपड़ों की पूरी बैग उठाती है। नहीं, हरे कृष्ण। एक लिखा है आत्मा अचल है, अचल है का क्या मतलब है? इमूवेबल, इसका मतलब क्या है? वो चलता नहीं है, तो हम कैसे चलते हैं? गाड़ी में एक चीज होती है जो अपने आप नहीं चल सकती, लेकिन उसके बगैर गाड़ी नहीं चलती है, वो क्या है? बैटरी। बैटरी सारे गाड़ी को करंट देती है, लेकिन अपने आप नहीं चल सकती है, पूरी गाड़ी को चला सकती है? चला सकती है कि नहीं चला सकती? बैटरी है तो गाड़ी चलेगी, लेकिन बैटरी अपने आप नहीं चलेगी, तो अचल है कि बैटरी अचल है लेकिन गाड़ी को चलाती है कि नहीं चलाती? और सारा करंट पूरी गाड़ी में बैटरी का होता है, आत्मा के सारे। और एक अचल का अर्थ है कि ट्रांस, ये इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती, ये स्थाई है, स्थिर है, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकती, इसका एक कंसेप्ट ये है कि इट इज नॉट ट्रांसफॉर्मेबल, इसमें विकृति नहीं आ सकती है, ये सदा ऐसे शाश्वत रहने वाली अचल है, कूटस्थ है। कूटस्थ का क्या अर्थ है? एक आत्मा का लक्षण है कूटस्थ। कूटस्थ का क्या अर्थ है? हाँ, कूटस्थ का मतलब है जो सुनार के पास एक वो एरन होता है ना, एनवेल, एरन कहते हैं, उसके ऊपर कितने ही सोने के रूप बदल गए लेकिन एरन वैसा की वैसा रहा। तो इस संसार में कितने शरीर हमने बदले लेकिन आत्मा वैसे का वैसे, आत्मा जैसे था वैसे ही है। और जैसे सोना कभी कान का बाला बना, कभी नाक में कोका कमरा, कभी हाथ में कंगन बना, सोना तो बहुत रूप चेंज किया लेकिन सोना असली तो जिसके ऊपर कूटा गया वो तो वैसे का वैसे पड़ा है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसे आत्मा वैसे का वैसे है, हाथी के शरीर में भी गए, गधे में भी गए और देवता में भी गए और इंसान में भी आए, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन आया, वो कूटस्थ है। कूटस्थ का मतलब एनवेल की तरह, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उसके ऊपर कूटे व जेने वाली चीज के रंग रूप बदल जाते हैं। तो हमने कई शरीर बदले हैं लेकिन आत्मा वैसे का वैसे, आत्मा का कोई शरीर बदल, आत्मा कुछ बदलता नहीं है, उत्तर है। तो ये आत्मा के सारे लक्षण भगवान पहले शास्त्र के आधार के ऊपर और संतों के आधार के ऊपर बताते हैं और फिर नास्तिकों की दृष्टि से बोलते हैं। अगर आप मानते हो कि आत्मा नाश होती है तो भी चिंता करने की क्या जरूरत है? तो बिल्डिंग है, गिर गई, मलबा हो गया, तो मिट्टी पहले ही थी, फिर मिट्टी हो गई, फिर मिट्टी को ईंट बनाओ, फिर बिल्डिंग बन जाएगी, फिर इसमें रोने की क्या बात है? अगर मर भी गया तो नाश तो भाई नाश हो गई तो फिर भी वापस बन जाएगा ना। तो इसलिए बहुत अलग अलग दृष्टिकोण से कृष्ण अर्जुन को एक ही सिद्धांत बता रहा है कि ये शरीर सदा नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, आत्मा सदा रहने वाली है। हमको आत्मा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में हमारी जानकारी ज्यादा होनी चाहिए। शरीर जब रहना ही थोड़े दिन है तो उसकी ज्यादा जानकारी, जब टाइम खराब करने की जरूरत क्या? पहले गुरुकुल में 25 साल तक आत्मा की जानकारी प्राप्त करते थे और शरीर का थोड़ा निर्वाह कैसे चलाना चाहिए उसके लिए कुछ जरूरत होती थी, उतना सीख लेते थे। अब तो 30 साल तक शरीर को कैसे सुख देना है उसकी शिक्षा लेते हैं और आत्मा के बारे में तो एक दिन एक घंटा भी हमारे को कहीं शिक्षा नहीं मिलती। ये सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए दुनिया में शांति नहीं है, सुख नहीं है, भाईचारा नहीं है, प्रेम नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा है, गाड़ियां ज्यादा है, इतनी गाड़ियां है कि आने वाले 10 साल के बाद गाड़ियां रोड के ऊपर चल नहीं सकेंगी, पैदल उससे ज्यादा जाएगा, जल्दी पहुंचेगा, ये स्थिति हमारी हो रही है। और जरूरत नहीं है, एक घर में 3 गाड़ियां है और एक आदमी एक गाड़ी में जाता है, गाड़ी पीछे खाली पड़ी होती है, लेकिन ये सेल्फिशनेस इतना हो गया है। तो ये समस्याएं बढ़ने वाली हैं, जब तक आध्यात्मिकता का अनुभव नहीं करेंगे तो लोग भौतिकता में गर्क होते जाएंगे, दे विल जस्ट ड्राउन देमसेल्फ। और संसार में आप समझो क्या, आप भी तो चल नहीं पाओगे ना, मंदिर आने के लिए भी 3 घंटे लग जाएंगे घर से यहाँ तक आने में। तो ये समस्याएं सामान्य समस्याएं, हमारी अपनी समस्याएं हो जाएगी कल, तो हमारे को कुछ सोचना चाहिए कि किस तरह। ये भगवद गीता पढ़ने का अर्थ ये है कि हमको प्रैक्टिकली संसार में सुखी कैसे रहना है, जब तक रहते हैं वो भी तो साधन को ही जुटाना चाहिए ना। तो ये दृष्टि, ये आत्मा इतनी आश्चर्य, ये अंत में भगवान का ये आश्चर्य है। कुछ लोग तो इसको देखते हैं तो आश्चर्य कहते हैं, कोई सुनते हैं तो इसको आश्चर्य कहते हैं, और कोई सुनने के बाद भी नहीं समझते हैं, आश्चर्य आश्चर्य कहकर समाप्त कर देते हैं। तो ये इतनी अद्भुत है कि इतना छोटी आत्मा इतने बड़े शरीर को चला रही है, आश्चर्य नहीं है। और निकल जाए तो बस, निकल गई नहीं, शरीर गिर गया तो उसके बाद उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए। क्या निकल गया, कोई दिखता भी नहीं है निकलते हुए, साइज उसकी इतनी छोटी है और कमाल कितना करती है, वो है तो बुद्धि काम कर रही है, वो है तो आदमी कितना जहाज बना रहा है और मर जाने के बाद उसको उठाना ही मुश्किल हो जाता है, आत्मा निकल जाए तो वो ही भारी पड़ जाता है। तो ये आत्मा कितनी आश्चर्यजनक है, ये भगवान कह के फिर वापस वही बात कहते हैं। जिस अलग दृष्टि, नास्तिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, शास्त्र की दृष्टिकोण से, साधुओं के दृष्टिकोण से, आत्मा की अमरता और शरीर का नाशवंत ये सिद्धांत स्थापित भगवान करते हैं। तब आदमी के मन में ये विचार आ सकता है, फिर शरीरों को छोड़ो, क्या जरूरत है शरीर की, हम आत्मा है, बैठ के ध्यान करेंगे, हिमालय में चले जाएंगे। मानो ऐसे अर्जुन का विचार आए तो भगवान ने एकदम यू टर्न लिया, आत्मा हमारा ठीक है लेकिन शरीर तुमको क्षत्रिय का मिला है, इसका धर्म है युद्ध करना। शरीर बेकार नहीं है, ये क्षण थोड़े दिनों के लिए है लेकिन ये ऐसी नाव है जो आपको भवसागर से पार ले जा सकती है। ये मानव शरीर क्षण भंगर होते हुए भी इतनी अद्भुत ये नौका है, अगर आपको अच्छा कर्णधार कैप्टन गुरु मिल जाए और शास्त्र की अच्छी हवाई लगने लगे तो भवसागर पार हो जाएगा। तो शरीर बेकार नहीं है, नाशवंत का मतलब बेकार नहीं है, शरीर को ठीक तरह उपयोग करो, आत्मा के हित के कार्य करो। तो भगवान एकदम यू टर्न लेंगे और अर्जुन को अब कहना शुरू करेंगे, क्षत्रिय हो, तेरा शरीर तुमको धर्म की रक्षा के लिए मिला है, उठाओ अपना धनुष बाण, तुम कायरों की तरह यहाँ से जाना मत। तो ये जो श्लोक है इससे आगे इसका हम कल श्रवण करेंगे और फिर बुद्धि योग शुरू हो जाएगा। हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण,
धन्यवाद।